ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय रामनाथ भाई जी बैठे हैं। आप सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे। पंजाब की सभा में आदरणीय रामनाथ भाई जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं संक्षिप्त में भाई साहब का परिचय आप सबको देना चाहती हूँ। आप 1972 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आपको यह ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा, जिससे आपने ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। 1978 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण और विश्व सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आपने भारत भ्रमण किया मानवता के कल्याण के लिए। भारत से बाहर भी आप कई देशों में गए ईश्वरीय सेवार्थ, जिनमें मुख्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके और दक्षिण अफ्रीका में आपने शिव बाबा का परिचय जन जन तक दिया। आप धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने अनेक संत महात्माओं, महामंडलेश्वरों को श्रेय आपको जाता है। आपकी ओजस्वी वाणी से वो संत महात्मा इतने प्रभावित हुए कि वो अनेक संत सम्मेलनों में बाबा के घर माउंट आबू आते रहते हैं और यहाँ का जो स्नेह है वो अपने जीवन में भरकर लेके जाते हैं। और साथ में अनेक सम्मेलन आपने, संत सम्मेलन यहाँ किए हैं और करवाए हैं। आज हम सबके बीच में आप हैं और आपसे हम सब सुनेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्रता को कैसे अपनाया जाए। परमादरणीय रामनाथ भाई जी,
ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है कि गृहस्थ जीवन में पवित्रता का महत्व क्या है। आप जानते हो ब्रह्मा कुमारीज की ये संस्था की जो उत्पत्ति हुई है उसका बीज है सनातन धर्म है। आप देखेंगे दादा लेखराज थे, उनके परिवार था, उनके लौकिक घर में एक संत आए, वो प्रवचन करा रहे थे, तो उसके बीच में ही ब्रह्मा दादा लेखराज उठ के चले गए। तो बड़ी बहू थी विजेंद्रा दादी, उनको लगा संत सामने बैठे हैं प्रवचन कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्यों उठ के गए। बच्चे भी थे, उनकी वाइफ भी थी, तो भी बहू उठ के गई। कमरे में देखा कमरा बंद था, बिजरा दादी ने कमरा खोला तो देखा चारों तरफ प्रकाश और आवाज आया निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो उत्पत्ति कहां से हो गई। अभी आपके मन में आएगा विचार तो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, ये सनातन संस्कृति क्या है। तो संगम पर, क्योंकि गीता में भी कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तो अर्थात इस सृष्टि पर जो भी शास्त्र धर्म बहुत कुछ है तो भी उससे ये धर्म की पालना नहीं हो रही है। तो मैं स्वयं आता हूं। तो स्वयं आके क्या करता है कि धर्म की स्थापना के लिए ऐसे ज्ञान देता है। तभी उसको कहा वो ज्ञान का सागर है। तो उस ज्ञान यज्ञ रचता इस सृष्टि पर। किसने रचा? परमपिता शिव परमात्मा ने। सत्यम शिवम सुंदरम कहा। गॉड इज ट्रुथ, अविनाशी है, सदा शिव है। वो स्वयं आकर के ये ज्ञान यज्ञ रचता इस सृष्टि पर। और इस यज्ञ के अंदर जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो ज्ञान की जो धारणा करता है, धर्म इति धारणा, जो ज्ञान की धारणा करता है उसको कहा आदि में, शुरू से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। शिव परमात्मा ने आके कौन सा ज्ञान दिया? जो साधारण मनुष्य थे, पतित थे, तो उनको पावन बनाया। कैसे बनाया? ये ज्ञान यज्ञ रचा है। इस ज्ञान यज्ञ के तहत ज्ञान सुनकर जिसने ये ज्ञान की धारणा की है, अपने जीवन में धारण किया, आत्मसात किया, आचरण में ले आया, उसका नाम है आदि शुरू से सनातन, जो कभी मिटने वाला नहीं। क्यों? बनाने वाला कौन, स्थापन करने वाला कौन? सदाशिव का, अविनाशी का। वो आके इस चीज स्थापना करता है। तो इसलिए कारण आदि सनातन, सनातन अर्थात कभी मिटने वाला नहीं। तो क्या किया उन्होंने? देवी देवताओं की स्थापना किया, मनुष्य को देवता बनाया। ये धर्म की स्थापना है। इसलिए कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने किया? नहीं तो आज किसी को पूछो आप, सनातन धर्म की स्थापना किसने किया? हिंदू कहते तो हिंदू धर्म कौन, किसने स्थापन किया? हर एक धर्म के गुरु है। और उसके अंदर, इस धर्म के अंदर सनातन संस्कृति है। सबसे पहले देखो लक्ष्मी और नारायण, आज भी देख लो वही संस्कृति चल रही है। आज भी भारत के देखो प्रेसिडेंट है, कोई भी उनको एक शब्द भी बोल नहीं सकता है, इतना सम्मान है राष्ट्रपति का। ऐसे ही भारत के अंदर सनातन संस्कृति के लक्ष्मी और नारायण, उनका चित्र देखो आप, सारे विश्व के किसी भी कोने में जाओ आप, किसी ने उनके चित्र को अभी तक छेड़ा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, कैसे लक्ष्मी नारायण जो कपड़े पहने हुए हैं वही मुद्रा में आज तक भी। लेकिन राधा कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाकी उनका देख लो जो चाहे चित्र किया, लेकिन एक लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है ये सनातन संस्कृति के मूल धारणा है। तो पवित्र गृहस्थ धर्म है। तो गृहस्थ धर्म है, संन्यास धर्म बाद में आया। तो भारत की सनातन संस्कृति के अंदर पवित्रता। अब आप पूछेंगे पवित्रता क्या? ये सनातन संस्कृति की नींव है, फाउंडेशन है। तो उसके अंदर का फिजिकल और मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी, शरीर स्वच्छ। आप देखेंगे शरीर को थोड़ा सा इचिंग हो रहा है, क्यों? इस चमड़ी को पानी लगता है, पसीना लगता है, सड़ जाता है। शरीर को स्वच्छ रखो, दो दफा स्नान करो सवेरे शाम को, स्वच्छ कपड़े पहनो, जैसा अन्न वैसा शरीर। शरीर को अच्छा खाना दे दो, सात्विक खाना दे दो। अगर तामसिक और किसी प्रकार के देते हो तो बीमारियों का मूल कारण, दुखों का कारण, काम क्रोध लोभ का कारण अन्न है। अन्न शरीर को स्वच्छ दे दो। इसलिए कहा भौतिक स्वच्छता और मानसिक, किसी को देखते ही भारत के अंदर आता है वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली कहते हैं हम। वसुधा एक परिवार है, किसी को देखते ही यह हमारा है, यह और कोई नहीं है। किसी प्रकार के कपड़े अलग अलग पहना हुआ हो, यही शिव बाबा ने आके सनातन संस्कृति के अंदर ये ज्ञान दिया। एक ब्रह्मांड में पिता रहता है और सारी उनके बच्चे इस सृष्टि पर है, वसुधैव कुटुंबकम है। ये कौन का रचता और रचना का ज्ञान दिया। हम सब कौन? एक शिव बाबा की रचना है। ये बुद्धि में अगर रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, जिसने स्वीकार किया, जिसको समझ में आया, उसका नाम है ये सनातन है, सनातन संस्कृति को मानने वाला है और सनातन धर्मी है। उनके जीवन में सनातन धर्म आया है तो उस परंपरा से चलता है। तो सनातन संस्कृति के अंदर पवित्रता है, स्वच्छता है। इसलिए भारत में देख लो, आप किसी के घर में जाओ, माताएं देख लो, सवेरे उठी, घर साफ किया, स्नान करती है, सबसे पहले घर के सामने तुलसी का झाड़ होता है, सबसे पहले तुलसी के झाड़ को पानी डालती है, वो झाड़ हरा भरा रहता है। कोई भी, ये सनातन संस्कृति के एक सिंबल है। अगर किसी के घर में जाओ, कैसे पता चले ये व्यक्ति कैसा है, मेरा सम्मान होगा, मेरे जो मैं चाहता हूं वो होगा, कैसे समझे? जिनके घर के सामने तुलसी का झाड़ होता है, सदा हरा भरा रहता है। क्यों? रोज पानी डालते हैं। अगर अंदर वाले सूखे हैं, व्यस्त है, रोज पानी नहीं डालते हैं, तो वो झाड़ सूखा हुआ है। अंदर जाते ही पता चलता है, अंदर रहने वाले भी ऐसे सूखे हैं। आप पूछेंगे ये पवित्रता कहां से आई, तो ये आचरण कहां से आया? तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सनातन संस्कृति की नींव डाली है। और इस ज्ञान को जो मानता है, समझता है, आचरण में लाता है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री है, राजा है, रॉयल फैमिली है, प्रजा भी चाहिए, सेवक भी चाहिए, तब का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। इस सनातन संस्कृति के अंदर जो शिव बाबा आके आदि में शुरू से ही संकसत कलयुग के अंतिम समय पर सत्युग के पर पहले चरण में शुरू में ही यह ज्ञान देता है, ये सनातन संस्कृति के बीज बोता है। जिसके जीवन में धारणा आई, वह अपने जीवन में ये धारणा पालन करता है, स्वच्छता। इसलिए आप देखो, जीवन में अगर आज भी मुझे एक शंकराचार्य ने पूछा, बहुत बड़ा शंकराचार्य नामी ग्रामी, कि आप भाई बहने, माताएं भाई सब परिवार में एक साथ रहते हो, ये कैसे हो सकता है? आग और कपूस दोनों एक साथ कैसे रह सकता है? हमने कहा, स्वामी जी, ये मनुष्य की ताकत नहीं है, ये उस सच्चिदानंद की ताकत है। तब का इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये किसने स्थापन किया? स्वयं ईश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, वो आकर के इसकी नींव डालता है, इसका ज्ञान देता है। इसलिए आज भारत में कितने हजारों से लाखों से होंगे परिवार में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, माता है, परिवार का परिवार। किस आधार से ये ताकत कहां से आई? ये कोई मनुष्य के पास नहीं आए, नहीं तो सारे शास्त्र में सब जगह पर कहा, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। एक ही शिव बाबा ने आकर कहा, मैं परमधाम, आज भी कहा, मैं परमधाम से आता हूं, राजयोग सिखाने आता हूं। किसको? आत्माओं को। यह स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, यह रूहानी है, आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। यह शरीर को सशक्त बनाने के लिए, आत्मा को, शरीर को सशक्त बनाने के लिए नहीं, आत्मा को सशक्त बनाने के लिए। तब कहा, आत्मा समझ मुझे याद करो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन माना, पहले आत्मा समझो, अगर आत्मी अगर शरीर का भान है तो हमारे विचार के तरंग ऊपर नहीं जाते हैं, हॉरिजॉन्टल जाते हैं। वह ऊपर की ओर जाना है, आत्मा ऊपर से आई, आत्मा लाइट है, प्रकाश है। अगर उस स्मृति में रहते हो, इसलिए कहा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग माना आत्मचिंतन परमात्म चिंतन और कुछ नहीं है। इसी को योग अग्नि कहा, बीज रूप स्थिति का। अगर रोज कोई भी व्यक्ति अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त है, ये सनातन धर्म की सनातन संस्कृति की सबसे पहले धारणा है। बाबा रोज कहता है, बहुत सारी श्रीमत है। क्या श्रीमत है? आप अगर गिनती करो बहुत है, 100, 200, 300 मिलेगा। सिर्फ तीन ही श्रीमत है, उसके अंदर सब आते हैं। सबसे बड़ा श्रीमत, सवेरे उठते ही खटिया पर नहीं, अलग जगह पर, जरूरत हो तो स्नान करो नो बैठकर अलग जगह पर, आत्मचिंतन परमात्म चिंतन, मेडिटेशन ध्यान योग। अगर वो आप करते हो तो आत्मा को जो शक्ति चाहिए सारे दिन में कर्म करने के लिए, कर्मेंद्रियों पर जीत पाने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो सवेरे सवेरे 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, अगर आप आत्मचिंतन परमात्म चिंतन करते हो, उस शक्ति को अपने अंदर धारण करते हो, सबसे पहला श्रीमत ये है। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना चाहते हो, इंद्रियों जीत बनना चाहते हो, तो शक्ति चाहिए, पावरफुल ब्रेक चाहिए। ज्ञान है, ज्ञान सब कुछ नहीं है, नॉलेज इज लाइट का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए ताकत चाहिए। इसलिए कहा योग एक माइट है, शक्ति है ये। तो सवेरे सवेरे अगर आप अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचारी बनना चाहते हो, पवित्रता का बल चाहते हो, शक्ति चाहते, इसलिए हम योग बल कहते हैं, तो सवेरे आवश्यक है। नहीं तो इंद्रियों पर आप जीत नहीं पा सकते हो, क्योंकि बहुत जन्मों की आदत है। इस आदत को मिटाने के लिए, इस आदत पर तब कहा मन जीत जगत जीत कहते दुनिया में, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन जीत नहीं, विकारों पर जीत। उसमें भी काम और क्रोध नरक के द्वार कहा है। इसको जीतने के लिए वो ईश्वरीय शक्ति चाहिए। इस दुनिया में आप कितना भी तप चात करो, आप जानते हो विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध पर जीत नहीं पाया। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा तपस्वी था, ज्ञानी था, तो भी मंडोदरी ने सिखाया, समझाया, अपने बेटे ने समझाया, भाई ने समझाया, नहीं, वो बल चाहिए। आप कहेंगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे, तब का सुनना पढ़ना, लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग समझ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सारा विश्व देख लो एक हास्य नमस्ते करता है, सिर्फ एक भारत देश है, कोई भी आया दो हाथ जोड़ता है। तो यहां भी व्यवस्था है ध्यान करने का, आत्मा को भी दो हाथ है, नहीं तो सारे विश्वविद्यालय में अगर आप शास्त्र भी देख लो, मन जीत जगत जीत का, मन को ले लो, बुद्धि का ज्ञान किसी ने नहीं बताया, सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। हां गीता में एक जगह पर है, लेकिन वो भी किसी को पता नहीं है, खोल के दिखाना पड़ता है। अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, अर्जुन ने माना नहीं, युद्ध का समय आ गया, तब कहा हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। अर्जुन को दृष्टि नहीं थी, कौन सी दृष्टि दिया? फिर कहा मैं आपको विश्व रूप दिखाता हूं, अर्जुन के सामने कौन सा रूप था? तब कहा आत्मा समझना जरूरी है, और वही आज साइंस ने भी हमको करके दिखाया। साइंस ने एक छोटा सा मशीन दिया मोबाइल, उसके अंदर आप 10 नंबर डालो, एक मिनट के अंदर आपका आवाज सात समुद्र क्रॉस करके कहां से कहां चला जाता है, विश्व के उस कोने में जाता है। कैसे गया वो? चमत्कार नहीं है, साइंस ने करके दिखाया। वही हमारे इस सनातन संस्कृति के अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी है। उसी का नाम मेडिटेशन है। अगर आप में से कोई जानते हो, आज से मेरे ख्याल से कम 15-20 साल पहले मधुबन में ओम शांति भवन में बाप दादा गुलजार दादी के द्वारा मुरली सुना रहा था। सुनाते सुने बीच में एकदम माइक बंद हो गया, सबको लगा माइक कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन एक सेकंड के बाद बाबा ने तुरंत कहा, देखो जगदीश बच्चा अमेरिका में स्टेज पर चढ़ रहा है, बाबा को याद करते हुए स्टेज पर चढ़ रहा है। देखो अमेरिका का आवाज, बाबा मुरली सुनाते सुनाते ओम शांति भवन में क्या पहुंचा, कैसे पहुंचा। हम बोलते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, बोलते हैं दिल क्या है, बुद्धि की लाइन क्लियर, वहां का संकल्प यहां पहुंचता है। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग भी वही, यहां बैठकर
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
ओम शांति। तो आया ये पवित्रता कहां से आई? तो सवेरे सवेरे उठकर हम अगर 15 मिनट भी आत्मा समझकर शिव बाबा को परमधाम में याद करते हो, वो शक्ति ही इन इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करती है। तब कहा कर्मेंद्रियो जीत, तो ये कर्मेंद्रिया चंचल होने का कारण इनके पास ताकत नहीं है, ब्रेक नहीं, पावरफुल। उसको कहा योग बल, बुद्धि बल। तो यहां बुद्धि योग है, मन का योग नहीं है। तब कहा अर्जुन को भी, आपको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, बुद्धि नेत्र। तो यहां बुद्धि इसलिए कहते याद, याद बुद्धि को रहती है, मन के अंदर विचार आता है। किसी ने पूछा, देखा देखो बच्चा एक साल पढ़ता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाए, 10 पेज लिखता है, कैसे लिखता है? सब कुछ बुद्धि के अंदर धारण करता है। तो ज्ञान बल का उसको कहते हैं बहुत ब्रिलियंट है, हुशार है, समझदार है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी शिव बाबा रोज ये ज्ञान धन देता है। ये ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। अगर इसका एक बूंद, बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, रोज एक एक बूंद अगर आप लिखते हो, सुनते नहीं, सुनने से नहीं होगा, सुना 1 मिनट के बाद खत्म। और आज की दुनिया में तो, मोबाइल की दुनिया में तो असंभव है बुद्धि में ज्ञान ठहरना। तब कहा कोटों में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके बुद्धि में सवेरे जो आपने ज्ञान सुना, एक बूंद अगर याद है बुद्धि के अंदर, वो याद नहीं रहता आपको, नहीं हमें भी नहीं रहेगा। उसकी विधि है, धारणा अपने आप नहीं होती है। जब आप सारी मुरली सुनते हो, सभी मुरली के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक किसी को सेवा का, किसी का योग को, योग का, किसी का श्रीमत, किसी को धारणा करने का, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें से एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा। लिखना जरूरी है, सदा नहीं, 10-15 दिन आदत डालो। उसके बाद सवेरे से रात तक 2-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ। नहीं तो हमारे अंदर एक आदत बनी है, औरों को ज्ञान सुनाना ही सेवा है। आज बाबा ने कहा अपने को भी समझाओ, अपनी धारणा भी चाहिए, इसलिए अपने को पढ़ाओ सबसे पहले। लिखने के बाद अपने को पढ़ाओ सवेरे से रात तक। रात को सोने जाते हो, बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे? आज सवेरे बाबा ने क्या कहा था? अगर रात को सोते समय आपको याद आ गया बाबा ने ये कहा था, माना आपके अंदर संस्कार बन गया है, धारणा हो गई है। अगर ये धारणा है, रात को सोने के बाद बुरे स्वप्न आएंगे अवश्य, क्योंकि बहुत जन्मों के कर्म भरे हुए हैं। ये बुद्धि कभी सोती नहीं, मन सोता है। अगर बुरे स्वप्न आते ही बुद्धि तुरंत आपको उठाती है, जग गए स्वप्न खत्म। अगर बुद्धि ने उठाया नहीं, क्यों नहीं उठाया? उसके पास ज्ञान नहीं है, वो आपको पाप करने लगाएगा। आज हमारे मुख से, दृष्टि से, बोल से, कर्मों से, बाबा ने आज इतना तक कहा, मन में किसी को दुख के प्रति, मन औरों के प्रति मन में संकल्प भी आना, ये ऐसे है, इनका ऐसा होना चाहिए, ये भी सूक्ष्म श्राप है। तब का मन में किसी के प्रति गलत विचार आना भी ये दुख देना है। मुख छोड़ो, हाथ छोड़ो, कर्म छोड़ो, आचरण छोड़ो, सबसे सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है ये, आत्मा सूक्ष्म है, उसके लिए धारणा है ये। तब कहा अगर इसका एक बूंद आपके बुद्धि में आज रात तक याद है, बार बार अपने को पढ़ाओ। बुद्धि अपने आप मंथन करती है, मंथन से शक्ति आती है। फिर सामने सवेरे से शाम तो कोई भी मिलता है, जरूर ज्ञान दान करने की आदत डालो। इधर उधर के समाचार नहीं सुनाओ, कोई मिला तुरंत, आज शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था, और उसका चेहरा देख लो खुश हो जाता है, हमने भी मुरली सुनी थी, हमको याद ही नहीं है, इनको याद है। तो कहा, तब कहा शास्त्रों में भी कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। ये वस्तु व्यक्ति वैभव का आकर्षण क्यों, ये माया क्यों है? है वो अपने जगह पर, अगर मेरी स्मृति में ये ज्ञान है तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, मैं उस माया के वश नहीं होगा। तब का स्मृति लब्धा, बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर जागृत है वो अपने आप नहीं होगा, उसकी विधि बताया। दवाई है आपके पास, इससे बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई लेने की विधि चाहिए। ये खाली पेट लेना है, ये रात को लेना है, कभी भी सुन लो नहीं। तो ज्ञान धारण करने की भी विधि है। एक शब्द लिख के रखते हो अपने आप को सवेरे, दिन में, शाम को, रात तक, और कोई मिला दो चार लोगों को सुनाते हो तो संस्कार बनता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान के संस्कार बनाओ, ये व्यर्थ विकल्प पापों के संस्कार मिटाओ। ये धारण हो गया वो अपने आप चला जाएगा। ये ज्ञान वो है, अग्नि है ये। ये ज्ञान गंगा जल है, पाप को धो देता है। क्यों? ये इधर से नहीं आया, ऊपर से आया है। सिर्फ एक ही बूंद बस, तब कहते हैं भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं। दो चार नहीं चाहिए, बहुत कुछ सुनने से बहुत कुछ नहीं आचरण में आता है। धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट, धीरे धीरे जाएगा। अगर ये करते हो फिर उसके बाद सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करते हो। कौन शिव बाबा? क्या याद करते हो? वो सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है। तो अपने हाँ वो तो है, वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, वो तो है, मुझे बनना है। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। आज भी बाबा ने कहा मुरली में, आप समान बनाओ, मैंने ज्ञान सुनाया इतना नहीं, कौन बना? अपने आप से पूछो। ग्रस्त में रहते ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर पवित्रता माना, ग्रस्त के अंदर मक्खी मच्छर नहीं, ग्रस्त आश्रम का स्वच्छता। उसके बाद जिस खटिया पर आप सोते हो एकदम साफ स्वच्छ, शरीर को स्वच्छ रखो। अन्न जो देते हो स्वच्छ अन्न दे दो। अगर अच्छा अन्न देते हो शरीर में आप आराम से 15 मिनट आधा घंटा स्थित प्रज्ञ का स्थिर होकर बैठ सकते हो, वो आपको विचलित नहीं करेगा। तब मन भी, मन के अंदर औरों के प्रति अच्छे विचार आते हैं। जो ज्ञान सुना वो धारण है, अपने आप बुद्धि के अंदर मंथन चलता है। आज बाबा ने ये कहा पवित्र बनो। पवित्र किस में बनना है? पवित्रता क्या है? अपने आप बुद्धि मंथन करती है। जैसे दही में मक्खन है दिखाई नहीं देता है, दोनों हाथ से मचलते हो आधा घंटा तो मक्खन बाहर आता है, मक्खन के अंदर शक्ति है। तो यहां भी जो सवेरे ज्ञान सुना एक ही बूंद, मुझे पवित्र बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, उसके लिए क्या प्रबंध करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, इतना बाबा ने सुनाया। अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना खाना भी महापाप है, रात को सोते हो बुरे स्वप्न आना भी महापाप है, किसी को देखते ही अगर मन में गलत विचार आता है, ये भी आज भी कहा, ये औरों को दुख देना है। और सारी बीमारियों का कारण माइंड इज रूट कॉज, विचार ही सारी बीमारियों का कारण है। अगर मेरे मन में नेगेटिव गलत विचार चलता है, शरीर के अंदर एक एसिड निकलता है, वो खाने को जला देता है। अगर वही अच्छे विचार चलते हैं, अच्छे विचार कहां से लाओ? जो सवेरे मुरली सुनी, एक शब्द लिख के रखा, चलते फिरते कर्म करते, कर्म योग कहा, कर्म करते करते उसका बुद्धि के अंदर मन के अंदर चिंतन चलता है। कोई मिला तुरंत आपको उनको भी सुनाया, तो ये करते हो तो अच्छे विचार, दान भी कर रहे हो अपने आप को भी पढ़ा रहे हो, तो अंदर शरीर के अंदर एक ऐसा रस निकलता है, तो सदा प्रसन्न। आज बाबा ने कहा देवताओं जैसे सदा प्रसन्न रहना चाहिए, अपने आप नहीं होगा। आप जानते हो विश्व के ग्लोब के ऊपर कौन बैठा है? श्री कृष्ण कैसा बैठा है? तलवार लेके बैठा है, बंदूक लेके बैठा है, मुरली लेके बैठा है। तो हम भी इस पृथ्वी पर बैठे हैं, विश्व के मुरली बुद्धि में अगर है, मुरलीधर हो, तो आप सदा प्रसन्न हो, सदा हर्षित हो। अगर मुरली नहीं तो क्या है? जरूर कोई चिंता है, कोई इच्छा है, कोई दुख है, कोई समस्या है, सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं। तो इन ऐसे कलयुग में अगर आप कहो किसी को दुख नहीं, समस्या नहीं, नहीं, घोर कलयुग है, रव रव नरक कहा, ऐसे में ही शुभ बाबा आकर ऐसे कोटों में कोई ऐसे बच्चों को तैयार करता है। बच्चे आपको पढ़ाते, भगवान हमें पढ़ाता, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाता है। परमधाम से शुभ बाबा आकर तब हम कहते हैं भगवान हमको खिलाता है, भगवान हमको पढ़ाता है, भगवान हमारी पालना करता है। कौन भगवान? उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, निराकार है, जनन मरण में नहीं आता है, अभोक्ता है। इसलिए शिव के मंदिर में जाओ, शिवलिंग है, शरीर नहीं है। तो वो निराकार ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हमको मुरली के रूप में रोज सिखाता है, उसका एक बूंद धारण करते हो। हाँ, याद है, मन चंचल है जरूर, इनको देखते विचार आएगा, अरे कल इन्होंने बहुत गुस्सा किया था, आएगा तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, ये उसका धर्म और कर्म है, वो जाने, उसका फल उसको, मुझे क्या करना है। तुरंत मुझे सिखाता है, नहीं तुम बाबा ने आपको कहा था बच्चे, वो भी मेरा बच्चा है, शुभ बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इसका भी कल्याण करो, ये शुभ भावना तुरंत आती है। अगर बच्चों के साथ माँ है, माँ गुरु कहा, माँ बच्चों को समझाती है, तो हमें कौन समझाएगा संसार में चलते हुए? तो बुद्धि, कौन सी बुद्धि? दिव्य बुद्धि का। दिव्य बुद्धि कहां से आए? जिसके बुद्धि में आज की मुरली के पॉइंट याद अगर है, तो वो बुद्धि आपसे गलत काम करना नहीं देंगी। कितना भी मन चंचल हो, कितना भी बड़े हिसाब किताब हो, सब होगा, तुरंत बुद्धि कहेंगे, तुरंत याद आएगा शुभ बाबा आपने कहा था ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं बोलना। तब दुनिया में कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। यही रामायण में है, जब राम श्री राम वनवास में गए, कुछ लेके नहीं गए थे, सब साधु संतों ने देखा कि इधर बहुत बड़े प्राणी है, बहुत राक्षस है, कैसे चलेंगे। उन्होंने अपने योग बल से जो अस्त्र प्राप्त किया था वो अस्त्र श्री राम को दिया। एक दफा ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, लक्ष्मण भी चला गया, सीता भी चली गई, राम अकेला हो जाता है, तो खर भूषण श्री राम के ऊपर हावी हो जाते हैं, तब सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तुरंत आकाशवाणी होती है, राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ दो, ये अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित होती है, ये आपकी यादगार है। जो रोज ज्ञान अस्त्र और शस्त्र है, ये एक एक रोज एक एक जमा करो, रोज जमा करते तो संसार में चलते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा विघ्न आता है, ऐसा पेपर आता है, उस समय तुरंत आप क्या करो, तुरंत बाबा याद आता है, शुभ बाबा, तुरंत आपको बाबा टचिंग देता है। टचिंग माना ज्ञान नहीं सुनाता है, उधर शक्ति देता है, अंदर ज्ञान भरा हुआ है रिकॉर्डेड। बच्चे ये संकल्प का काम करो, ये अस्त्र छोड़ो, वो संकल्प याद आते ही विघ्न समाप्त, ये यादगार है। तो ये बाबा आज सनातन संस्कृति में हम सुनते कहानियां, ये आज बाबा आकर के परमधाम से हमारे जीवन में ये सनातन संस्कृति भर रहे, संस्कार भर रहे हैं। ये संस्कार अगर जितने हमारे जीवन में धारणा होते हैं, तब हम कहते हैं हम सनातन आदि सनातन देवी देवता बनने वाले हैं। हम मनुष्य मनुष्य नहीं, देवी देवता बनने वाले हैं। वो संस्कार आज भर रहा है, तभी हम कहते हैं कल भारत स्वर्ग होगा। ये अपने आप तो नहीं होगा, तो उसके संस्कार अभी हो रहा है। तो उस संस्कार के अंदर हमारे जीवन में किसी को दुख, किसी के प्रति गलत विचार, ये आने का कारण क्या है? अपवित्रता कहां से आई? आप कहेंगे एक मंत्र बता, एक बात बताता हूं। आजकल माताएं परिवार वाले सारे कहते हैं हमारे घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा काम क्रोध बीमारी नहीं होना चाहिए, अपने आप होगा ये? हाँ, एक शब्द अगर आप धारण करते हो तो आज कलयुगी दुनिया में संसार में जो हमारे अंदर कलह क्लेश है, काम क्रोध, संसार था पहले भी सत्युग से लेकर गृहस्थ धर्म था, अकेले सन्यासी नहीं थे, लक्ष्मी नारायण दोनों थे, आज भी है, अंतर क्या है? एक शब्द का अंतर है। अगर आज भी आप एक शब्द को धारण करते हो, आज भी हमारे घर से संसार में यह कलह क्लेश सदा के लिए समाप्त होगा। जो बाबा उसी के लिए आया है, वो एक मंत्र याद रखो कि हमारे मुख से कभी भी ना शब्द नहीं आना चाहिए। हां जी, आज अभी पंजाब का टर्न है, पंजाब में किसी पंजाब के भाई बहनों से मिलो, वो पहले कुछ भी बोले हां जी, है ना, बहुत अच्छा सुंदर शब्द है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के कुछ भी कहता, एक मंत्र याद रखो, ना शब्द आना नास्तिक है। हां जी, ये एक शब्द ही हमारे परिवार में, गृहस्थ जीवन में, व्यवहार में सदा सुख शांति लाता है। कैसे आप पूछेंगे? अब उसका स्पष्टीकरण देख लो। अभी माताजी घर में है, पति बिजनेस करके थक के आता है, नौकरी करके आता है, खेती में मेहनत करके आता है थक करके, और माताजी को कहता है माताजी चाय बना दो। तुरंत माताजी कहती दूध नहीं है, तो क्या होगा? आप सोच लो, चुप रहेगा वो? गुस्सा कहां से आया? हमारे बोल, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार। फिर आप पूछेंगे भाई जी दूध नहीं चाय की पत्ती नहीं, चाय कैसे बनाओ? हां, पहले बोलो हां जी, खुश हो जाता है वो, अपना काम करने लगता। दो मिनट के बाद आप जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आपने कहा ना चाय बनाओ, दूध लेके आती हूं, कहता अभी नहीं चाहिए। आपके मुख से ना नहीं आना, ये ना ही क्रोध का कारण, काम क्रोध लोभ, ये कहां से आया? ये कहीं से नहीं आता है, ये ऊपर से नहीं आया, ना किधर से आया? हमारे व्यवहार, हमारे आचरण। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गृहस्थ में रहो, बहु बेटे बाल बच्चे सब है, परिवार है, तब का वसुधैव कुटुंबकम। तो वहां कैसे चलना है? मुख से कभी भी ना नहीं, कितना भी बच्चे जिद करते हैं, सब कुछ होता है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा जब तक आपके मुख से ना शब्द नहीं आता है। हां जी, देने की जरूरत नहीं है, व्यवहार में बिजनेस करो, कर्म करो, सब जगह पर ना नहीं, हां जी। फिर दो मिनट के बाद पूछ लो। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, आज नहीं, कम से कम 30-40 साल पहले का। मधुबन में ही शुरू शुरू में सब दादी आई थी, कभी दादी प्रकाशमणि मुरली सुनाती थी, कभी शांतामणि दादी मुरली सुनाती थी, कभी चंद्रमणि दादी मुरली सुनाती थी, कभी जानकी दादी सुनाती थी। एक दिन चंद्रमणि दादी मुरली सुना रही थी, दादी प्रकाशमणि मधुबन में आंगन में बैठी थी, मैं क्लास करके आ रहा था, दादी ने कहा इधर आओ, ये सेवा ऐसी नहीं करनी है, ये ऐसी करनी है। मुझे पता चला दादी को पता ही नहीं है कैसे करना है। मैं एक मिनट में कह सकता था दादी ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, हां जी कहा, बस चला गया। एक ही मिनट ऐसा राउंड करके एक मिनट के बाद वापस आया, दादी आपने जो कहा ये ऐसे करेंगे ना तो ऐसा होगा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चाहे करो। एक ही मिनट के अंदर। तो बड़ों का सम्मान रखना है, किसी की बात को काटो नहीं, कोई गलत भी बोल रहे, झूठ भी बोल रहे, कलंक भी कर रहे, तो भी एक मिनट के लिए हां जी। अगर आप स्पष्टीकरण दे दो, दब के नहीं चलो, मर के नहीं चलो, कहता हमको मरना है, हमको दबना नहीं, एक मिनट के लिए। हां, कभी आधा बोल करके चला जाएगा, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक साल तक भगवान के घर में अंधेर नहीं आए, थोड़ी देरी होती है। तो हां जी करो, एक मिनट के बाद, एक घंटे के बाद, आधा दिन के बाद आप अपनी बात स्पष्ट करो, मर के चलो नहीं, स्पष्ट करो। तब का शिक्षा देने के भी समय और परिस्थिति देखनी पड़ती है, व्यक्ति देखना पड़ता है उनकी परिस्थिति क्या है। अगर उसी समय मैं बोलूं तुरंत, उनको भी लगता था मुझे भी आप सिखा रहे हो, मुझे मेरी बात काट रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। आएगा हर एक के अंदर अहम कौन जागृत कर रहा है, हमारे बोल, हमारे आचरण। हम टाइटल लगा देते हैं कि इनके अंदर अहम बहुत है, ये बहुत क्रोधी है। हाय, आपने क्या किया? आपने तेल डाल दिया, आपने चिंगारी लगा दिया, तो आपके उनके पास सब कुछ है, लेकिन मैंने क्या किया? तो आज अगर आप अपने गृहस्थ में शांति पवित्रता चाहते हो, कुछ भी नहीं, पति बच्चे परिवार है, हां जी करना सीखो। एक शब्द से वो प्रसन्न है, कहेंगे हमारे घर में लक्ष्मी आई है, कभी भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, आपके पास भी शक्ति शिव शक्ति है। वो स्मृति चाहिए और व्यवहार के अंदर शुद्धता चाहिए, नम्रता चाहिए, निर्माणता चाहिए। अहम आता है, सामने वाला कोई पत्थर नहीं है, उसके पास भी अहम है, अहम अहम टकराता है। वहां जो उत्पत्ति होती है वो काम क्रोध लोभ सब मोह अहंकार उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कहां हो गई? तो जड़ को पकड़ो। तो शिव बाबा कहते हैं संस्कार को मिटाओ। सिर्फ मैंने क्रोध आया बाबा सॉरी करने से जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं, बाबा को मैंने बता दिया चला गया नहीं। जड़ को खत्म करने की तरीका, अगर रोज बहुत कुछ नहीं करना है, आज जानते हमसे भी ज्यादा आपका अनुभव, एक एक माताओं को बुला करके परिवार वालों को मैं अनुभव बोलू, अनुभव सुनाए, एक एक सुनाएंगे। जो पक्के पवित्र है उनकी ये धारणा सवेरे अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे। शाम को 15 मिनट आधा घंटा कितना भी बिजी हो, शाम को आधा, जैसे शरीर को अन्न चाहिए आत्मा को योग की शक्ति जरूरी है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के बिगैर आप रह नहीं सकते हो। सवेरे शाम दो टाइम 15 मिनट, एक एक दो दो घंटा नहीं चाहिए, विधि है। आत्मा समझे नहीं, बैठ करके गीत सुनते बैठो, हम मंदिर में जाते हो भगवान से बात करते हो, बात करते रहो नहीं। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग सिखाया, शिव बाबा ने आकर परम धाम से आके विधि बताया, आज भी बताया, मैं आया हूं राजयोग सिखाने के लिए। वो विधि ही आपको पवित्रता का बल देता है। पहले 5-10 मिनट आत्मचिंतन करो, बैठते पूछो मैं कौन, नहीं तो याद रहता मैं मना माता हूं। अगर माता की स्मृति है, अरे नाश्ता बनाना है, सब्जी लाना है, ये याद आएगा। तो बैठते आत्मचिंतन पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मन बुद्धि को आप चलाओ, अगर आप नहीं चलाएंगे, उनके पास बहुत कुछ भरा हुआ है चलने के लिए। तो ये ज्ञान के द्वारा ये मन बुद्धि को चलाते हो। तो 5 मिनट, 5 ही प्रश्न है आत्मचिंतन का, मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, मेरे गुण, हाँ मेरे अंदर दैवी गुण थे लेकिन आज नहीं है, मुझे दैवी गुण धारण करना है, क्या क्या धारण करना है। फिर मेरे कारण कहां बैठे हो, मैं खाना खाने नहीं बैठा हूं, योग करने बैठा हूं। तो इधर देखना उधर देखना मोबाइल लेके बैठना तो योग लगेगा? टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। हम बिजनेस भी करना चाहते हैं और भगवान से भी बिजनेस करना चाहते हैं, ये दोनों नहीं होगा, एक होगा। सबसे मुक्त हो कितने रिलैक्स कहा, डिटैच कहा, अशरीरी कहा। आज बाबा ने जैसे बाप और दादा निराकारी निरअहंकारी है, तो वो शक्ति चाहते हो तो आत्मचिंतन। पांचवा, मैं कहां से आया, परम धाम, परम धाम में कौन है, शिव बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे, वो पवित्रता का सागर है, बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, क्या करो इस बात में, क्या करो इस बात में, क्या करो। अगर आप 15 मिनट ओनली पवित्रता के ऊपर बाबा से बात करते हो तो पवित्रता की अग्नि जलाई, ये अग्नि अपवित्रता को भस्म करती है। जैसे आप 2 मिनट में धूप में बैठो आ जाओ पसीना नहीं आएगा, 10-15 मिनट बैठो धूप में अपने आप पसीना निकालता है। तो 15 मिनट उससे जुड़ते हो एक शक्ति के अंदर, उसको कहा लगन में मगन। बहुत सारे प्रश्न है पवित्रता के ऊपर, स्वच्छ अन्न कैसे खाओ, कैसे पवित्र हो, गलत विचार आते हैं क्या करो, बुरे स्वप्न आते हैं क्या करो, किसी को देखते शरीर दिखाई देते क्या करो, गलत स्वप्न आते विचार आते क्या करो, ये सारे बाबा से बात करो, सबका जवाब मिलेगा। आप बाबा ने मुरली में सुनाया है और आपके पास भी है वो भरा हुआ, प्रश्न पूछेंगे तो बुद्धि तुरंत जवाब देती है। बाबा ने कहा अगर कहां भी अपवित्रता से बना हुआ खाना खाना पड़ता है तो बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद कर, शिव बाबा आप ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, बच्चों को पवित्र भोजन खिलाते हो, आप अपनी शक्ति से इसको पवित्र करो, दृष्टि दे के खाओ, कहा हर चीज की निवारण दिया है। अगर कहीं आपको डाउट है ये खाना स्वच्छ नहीं है, खाना पड़ रहा है, तो हर चीज का निवारण दिया है। तो ऐसे पवित्रता के वर बाबा से 10-15 मिनट आप बात करते हो, योग लगाते हो, तो ये अग्नि अपवित्रता को भस्म करती है। ऐसे दूसरा लो शांति का सागर का, शांति क्या अशांति क्या, आनंद का सागर का, ज्ञान का सागर का। तो एक एक शक्ति लेकर अगर आप 5-5, 10-10, 15 मिनट रहते हो, सिर्फ शक्तियों का वर्णन नहीं, वो तो भक्ति में करते हैं, महिमा करते हैं, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, शांति का, हाँ वो तो है, मुझे उसके जैसे बनना है, कल मुझे उनके पास जाना है, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा से, उससे हम गृहस्थ व्यवहार में रहो। और भी एक चीज है, जो सवेरे ज्ञान सुनाते हो, घर में आध्यात्मिक वातावरण हो। आप माताजी घर में ज्ञान सुन के गई, पति को बच्चों को खाना खिलाते हो, हाथ से खाना खिलाते हो शरीर को, साथ साथ मन में अगर ज्ञान याद है तो खाना खिलाते खिलाते सवेरे आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, दिन में रात को ज्ञान भी सुनाते रहो, दोनों परसों, सिर्फ शरीर को नहीं, प्रकृति और पुरुष दोनों, दोनों की सेवा एक साथ करो, तो एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है। नहीं तो खाना खिलाते खिलाते और संसार की कोई बात करते हो, ये चाहिए वो चाहिए ये ले आओ, तो क्या होगा। तो अगर और पवित्रता के अंदर परिपक्वता लाना चाहते हो, जो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, तो उसके और एक धारणा रखो, एक ना नहीं करना है, दूसरा जो मुरली सुन के चलते हो, जाते हो सेंटर से, चाहे भाई हो चाहे माताएं हो चाहे बच्चे भी हो, सुन के जाते हो, नाश्ता करते खाना खाते तीनों टाइम आप मम्मी को बताओ, मम्मी पति को बताएंगी, बच्चों को भी बताएंगे, खाना खिलाते हो, जैसे खाना परोसते हो ऐसे भी ज्ञान परोसो, एक साथ दोनों काम हो रहा है, उसको कहते हैं अच्छे श्रेष्ठ स्मृति में सेवा करो। तो अगर ऐसे वातावरण है, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना असंभव नहीं है। ये शिव बाबा की शिक्षा, ये सनातन संस्कृति की नींव डाल रहा है, इसी को दुनिया कहते सनातन धर्म है। आदि सनातन देवी देवता बनाने का धर्म स्थापन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसका सैंपल इधर है ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर ये है, ये तरीका है। अगर इस तरीके से चलते हो, दो ही काम, बहुत कुछ नहीं चाहिए, अगर दो गोली खाते हो अपने इंद्रियों पर जीत, जो शिव बाबा चाहता है, संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना चाहते हो, इतना ऊंच मंजिल प्राप्त करना चाहते हो, दो ही, एक सवेरे शाम को 15 मिनट आधा घंटा आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। दूसरा, रोज जो मुरली सुनते हो, एक शब्द सुनना नहीं है, एक शब्द लिख करके 10-15 दिन, बाद में नहीं चाहिए, बाद में आदत बनेंगे, लिख करके अपने साथ रखो, सवेरे से रात तक कम से कम 2-4 दफा बार बार अपने को पढ़ाओ, जब जब आप खाली हो, आज बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए। फिर सामने कोई मिला, किसी का फोन आया, उनको भी एक्सप्लेन करो, सिर्फ बाबा ने ये कहा इतना ही नहीं, ये तो पोस्टमैन का काम है, थोड़ा एक्सप्लेन करो ये कैसे करना है, वो भी अपनी बात बताएगा। इसका कहा शुभ समाचार दे दो, तो ज्ञान दान महादान है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारे क्लब के कमाई जमा करने का साधन है। तब बाबा ने कहा तो मैं आकर के हेल्दी वेल्दी और हैप्पी तीनों बनाता हूं। अच्छे विचार है, बार बार मुरली का चिंतन वर्णन करते हो, अच्छे विचार अच्छा शरीर देता है, स्वस्थ शरीर कैसे बना, अच्छे विचार, कोई गलत चीज आई तुरंत आपको विचार आता है ये नहीं खाना है, क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान है दिव्य बुद्धि का, वो तुरंत आपको बताता है ये नहीं खाना ये नहीं देखना, कौन रखेगा, ये दिव्य बुद्धि, ये दिव्य ज्ञान बुद्धि में है। तो स्वस्थ शरीर, फिर सदा प्रसन्न रहना चाहते हो, जिसके मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, ज्ञान का मंथन चल रहा है, कोई भी दिखाई दिया तुरंत इसको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, शुभ भावना कहते हम, तो सदा प्रसन्न है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और ज्ञान जितना सुनाते हो ये ज्ञान धन दान करते हो, तो वेल्दी भी बनते हो, हेल्दी भी बनते हो, हैप्पी भी बनते हो। ये तीनों हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कलयुग और स्वर्ग में यही अंतर है। आज किसी के पास बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है। आज किसी के पास इतना धन है, धन में खाने वाला कोई नहीं है। तो इन तीनों को शिव बाबा बैलेंस करता है, विधि बताता है। बच्चे ऐसे बीज बोलो संगम पर, ये कल्प वृक्ष सारे कल्प आपको फल देगा। तब का कल्प वृक्ष ये सदा फल देगा। बाबा गारंटी देता है 21 जन्मों के लिए, ये गारंटी है। सारा कल्प ऐसा बीज बोलो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कोई ऊपर से नहीं आता है, कोई आपको अपना आप दे सिर पर हाथ रखने से नहीं मिलता है। कमाई है, जो बोएंगे वो पाएंगे। व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। खेती में आज भी नियम है, सृष्टि में एक बीज बोलो, आज भी ये धरती 50-60 दाना देती है, अन्याय नहीं करती है। लेकिन बीज आपको बोना है, उसके अंदर भी जो बोते हो वो मिलेगा। आप गेहूं का बीज बोलो और कहो चावल चाहिए, मिलेगा नहीं। जो बोते हो तब का धन से भी सेवा करना है, मन से भी करना है, तन से भी करना है। नहीं तो आज देखो किसी के पास बहुत धन है लेकिन तन सदा बीमार। क्यों? तन से सेवा नहीं किया। तन बहुत अच्छा है, धन भी है, मन ठीक नहीं है। क्यों? तो ज्ञान दान भी करो, मन की सेवा, मनसा सेवा, मना कोई मिला ज्ञान का दान दे दो। ये आदत डालो, ये आदत ही हमको सदा प्रसन्न रखेंगे। जो बाबा ने आज बहुत अच्छा महामंत्र बताया, देवताओं जैसे, क्यों कल हम देवता बनना चाहते हैं वो अपने आप नहीं बनेंगे। यहां बीज बोलो, यहां संस्कार डालो, यहां संस्कार डालते हो तो वहां संसार बनता है। संस्कार से संसार, सिर्फ ज्ञान सुनने से हमारा संसार नहीं बनेगा। संस्कार, संगम पर संस्कार डालते हो सारे कल्प, इसलिए कल्प वृक्ष फल देता है। तो ये गृहस्थ में रहते हुए जो पवित्रता चाहिए, स्वच्छता चाहिए। देखो आप मक्खी मच्छर कहां होते हैं? जहां गंदगी है। अगर आप देखना घर में स्वच्छता है, घर में सदा मुरली चलती रहती है, मुरली की बात ज्ञान का चिंतन करता रहते हो, अच्छे बाबा के गीत बजाते रहते हो, देखना किसी के मन में काम क्रोध के विचार ही नहीं आएंगे। ये विचार कहां से आ रहे हैं? अस्वच्छता है। हमारे बोल, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे खाना, हमारे रहना स्वच्छ नहीं है। इसलिए कोरोना के समय पर भी देखो इतने लोग मर गए। क्यों? स्वच्छता नहीं है। तब गवर्नमेंट ने, डॉक्टर ने क्या कहा? बार बार सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धो लो। तो यहां भी जैसे ये हाथ स्वच्छ है, ऐसे मन बुद्धि को स्वच्छ करना है। इसलिए कहा मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी, फिजिकल क्लीननेस इज प्यूरिटी। ये दोनों चाहिए, सिर्फ एक ही नहीं है। ठीक है? ओम शांति।
पवित्रता के राह पर, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है।
पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर
दृष्टि निर्विकारी हो, मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो, सबको पावन करना यही भावना हो, सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश, सबको यही सुनाना है, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है,
पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है।
जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है।